ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सहकारी में हुई गड़बड़ी की जांच और समीक्षा के लिए उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग द्वारा गगन कुमार थापा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को आधिकारिकता प्रदान। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए एमाले सचिवालय की बैठक होगी कल। निर्धारित तिथि पर ही निर्वाचन कराने पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने दिया जोर। और चीन और कनाडा के बीच व्यापार कर से लेकर वीजा नियमों तक पर ऐतिहासिक समझौता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से नेपाल तामांग घेदुंग के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। आज हुई इस भेंट में तामांग समुदाय की जनसंख्या, संस्कृति तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। ये जानकारी प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार राम बहादुर रावल ने दी। घेदुंग आगामी माघ 5 को सोनाम लोछार के अवसर पर काठमांडू में तामांग सांस्कृतिक महोत्सव तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। घेदुंग के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराया कि तामांग समुदाय की जनसंख्या 30 लाख से अधिक होने के बावजूद जनगणना में हुई त्रुटियों के कारण लगभग 17 लाख ही दर्शाई की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि वर्तमान स्थिति का लोकतांत्रिक समाधान निर्वाचन ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए समाज के सभी स्तरों और वर्गों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। प्रधानमंत्री कार्की ने चुनाव के दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप और गतिविधियों को रोकने के लिए अब समुदाय स्तर से ही सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के साथ मनाया गया। दिवस मुख्य समारोह समिति द्वारा काठमांडू के खुला मंच में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने भूकंप सहित आपदाओं से होने वाली जनधन की क्षति को कम करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़े आवश्यक कार्य को संस्थागत टिकाऊ और परिणाम उन्मुख बनाने के लिए सरकार की ओर से योजनाबद्ध प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं के निर्माण को आने वाले दिनों में और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मंत्री अर्याल ने सरकारी निकायों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, निर्माण व्यवसायियों और समुदाय स्तर पर पूर्व तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनः निर्माण की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता बताई। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री कुमार इनमांग ने कहा कि भूकंप से होने वाली क्षति को कम करने के लिए आवश्यक पूर्व तैयारी और सतर्कता अनिवार्य है। आज ही काठमांडू के भूगोल पार्क में आयोजित भूकंप स्मृति सभा में गृहमंत्री अर्याल ने आपदाओं का सामना करने के लिए अंतर सरकारी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपसी अभ्यास और सीख से क्षमता बढ़ाई जा सकती है तथा नागरिक जागरूकता और लचीले शहरों के बुनियादी संकेतकों के क्रियान्वयन में क्षमता वृद्धि पर जोर दिया। 1990 साल के दो गते आए महाभूकंप की स्मृति में वर्ष 2055 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भूकंप के प्रति जागरूकता फैलाना और तैयारी को बढ़ाना है। विक्रम संवत 2072 वैशाख 12 गते आए भूकंप में भी जनधन की भारी क्षति हुई थी। निर्वाचन आयोग ने गगन कुमार थापा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को आधिकारिकता दी है। आयोग की आज हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया कि विशेष महाधिवेशन कानूनी और विधान सम्मत है और इसके आधार पर विशेष महाधिवेशन से चयनित पदाधिकारियों का विवरण अद्यतन किया गया जाएगा। ये जानकारी आयोग ने दी। हाल ही सम्पन्न महाधिवेशन के बाद निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के उपसभापति प्रकाश शर्मा ने कहा कि आयोग ने विधि और प्रक्रिया के आधार पर उनका पक्ष समर्थन में निर्णय दिया है। इस निर्णय के बाद कांग्रेस के निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड़का ने कहा कि आयोग का ये निर्णय उनके लिए मान्य नहीं होगा और वे अदालत का सहारा लेंगे। आयोग ने कहा कि 40% महाधिवेशन प्रतिनिधि महाधिवेशन मांग सकते हैं और उस अनुरोध के अनुसार महाधिवेशन आयोजित करना अनिवार्य है। साथ ही विधानता महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वोच्च प्रतिनिधि होते हैं और विशेष महाधिवेशन की मांग पर किसी का कोई विरोध नहीं था। इस आधार पर थापा नेतृत्व वाली कांग्रेस को आधिकारिकता दी गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने कहा है कि राजनीतिक दलों को चुनावी प्रतिस्पर्धा में जाने में सहयोग मिले, इसी उद्देश्य से आचार संहिता जारी की जाती है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन आचार संहिता 2082 के क्रियान्वयन के संबंध में आज काठमांडू में आयोजित राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भंडारी ने बताया कि प्रतिस्पर्धा को सहयोगात्मक बनाने के उद्देश्य से महीनों पहले ही मसौदा तैयार कर राजनीतिक दलों, संवैधानिक निकायों तथा संबंधित सरकारी कार्यालयों से राय सुझाव मांगे गए थे और उन्हीं के आधार पर इसे लागू किया जा रहा है। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भंडारी ने कहा कि किसी भी दल या उम्मीदवार के खिलाफ नो नॉट अगेन जैसे शब्दों का उपयोग कर सोशल मीडिया पर प्रचार करना आचार संहिता के विरुद्ध होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबरा ने बताया कि उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों की भी निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अनियमित रूप से बड़े पैमाने पर धन के उपयोग की शिकायतों को संबोधित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। आयुक्त जबरा ने कहा कि नेपाली सेना के सहयोग से सोशल मीडिया की भी निगरानी की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि निर्वाचन को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से आचार संहिता जारी की गई है और उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों से स्पष्टीकरण मांगकर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने तक की कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए आज सभी 165 निर्वाचन क्षेत्रों में मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापित कर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जीसी ने बताया कि जिला मुख्यालयों में 77 मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय और उनके बाहर के 88 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापित किए गए हैं। व्यवस्था के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय का नेतृत्व जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे जबकि न्याय सेवा के 88 द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को निर्वाचन अधिकृत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेपाली कांग्रेस देववा समूह के कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड़का ने कहा कि गगन थापा समूह द्वारा बुलाया गया विशेष महाधिवेशन पार्टी के विधान के विपरीत है। आज नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कार्यवाहक सभापति खड़का ने कहा कि पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति के निर्णय के विपरीत आयोजित विशेष महाधिवेशन और उसके द्वारा लिए गए निर्णय वैध नहीं है। नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउवा पक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की आधिकारिकता के संबंध में आज निर्वाचन आयोग को जानकारी दी है। विशेष महाधिवेशन के माध्यम से गगन थापा के पार्टी सभापति चुने जाने के बाद आधिकारिकता विवाद पर निर्वाचन आयोग द्वारा जांच किए जाने के दौरान पार्टी में हाल में विकसित घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए आयोग पहुंचे कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड़का ने यह जानकारी दी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्रीय सचिवालय की बैठक बुलाई है। आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के उद्देश्य से कल दोपहर 1 बजे सचिवालय बैठक बुलाई गई है। ये जानकारी एमाले के केंद्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख मीन बहादुर शाही ने दी। उनके अनुसार बैठक ललितपुर के चासल स्थित एमाले केंद्रीय कार्यालय में आयोजित होगी। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने कहा है कि आगामी फागुन 21 को निर्धारित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तय समय पर ही होगा। आज भरतपुर महानगर पालिका के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करते हुए संयोजक दाहाल ने कहा कि निर्वाचन का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और जनता आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए अब चुनाव होगा या नहीं इस तरह के असमंजस में नहीं रहने का आग्रह किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन और कनाडा ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में पुनः स्थापित करने का ऐलान किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और निवेश क्षेत्रों में गहरा सहयोग शामिल है। ये कदम बीजिंग में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दौरे के दौरान हुआ। ये 2017 के बाद चीन के लिए किसी कनाडाई नेता की पहली आधिकारिक यात्रा भी है। कनाडा ने चीन से आयात होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर वर्तमान में 100% शुल्क को लगभग 6.1% कर दिया है। ये दर उन ईवीएस पर लागू होगी जिसकी वार्षिक लिमिट 49,000 वाहन है। ये संख्या लगभग 2023 के आयात स्तर के बराबर है। अनुबंध के तहत अगले कुछ वर्षों में इसे 70,000 तक बढ़ाने की योजना है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी में हुई गड़बड़ी की जांच और समीक्षा के लिए उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग द्वारा गगन कुमार थापा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को आधिकारिकता प्रदान। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए माले सचिवालय की बैठक होगी कल। निर्धारित तिथि पर ही निर्वाचन कराने पर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने दिया जोर। और चीन और कनाडा के बीच व्यापार कर से लेकर वीजा नियमों तक ऐतिहासिक समझौता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।